नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध के बीच शटडाउन शुरू, प्रमुख सेवाएं प्रभावित, हजारों कर्मचारियों के वेतन में देरी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर बड़े स्तर पर हुए हिंसक प्रदर्शनों में 12 लोगों की मौत। इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र में निर्माणाधीन चर्च के ढहने से 25 लोगों की मौत। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या 69 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापक नुकसान पर दुख व्यक्त किया। और संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट पर चिंता जताई। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध के बीच शटडाउन शुरू हो गया है, कई प्रमुख सेवाएं प्रभावित हुई हैं और हजारों कर्मचारियों के वेतन में देरी हो रही है। एक रिपोर्ट।
कल समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से पहले अमेरिकी संसद के एक अस्थायी वित्त पोषण विधेयक पारित न कर पाने के बाद आधी रात से शटडाउन शुरू हो गया है। ओबामा केयर सब्सिडी में वृद्धि को लेकर सांसदों में मतभेद बना हुआ है। लगभग 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को प्रतिदिन छुट्टी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि वे 1/4 कर्मचारियों को हटाएंगे। अमरीकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में भी भारी गिरावट देखी गई है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 12 लोग मारे गए हैं। बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों की पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से झड़पें हुई। आज की हिंसा में नीलम ब्रिज और अन्य जगहों पर हुई मुठभेड़ों में 8 लोग मारे गए। अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में जारी विरोध प्रदर्शनों ने पिछले 72 घंटों से क्षेत्र को पूरी तरह ठप कर दिया है। इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र में आज एक निर्माणाधीन चर्च के ढहने से 25 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा चर्च में वार्षिक समारोह के दौरान हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस वक्त चर्च में मौजूद थे। मृतकों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत कार्य जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की दीर्घकालिक मांग का प्रबल समर्थन किया है। स्टब ने बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बहुपक्षवाद, वैधता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। ये सिद्धांत भारत के कूटनीतिक रुख से पूरी तरह मेल खाते हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA आज से प्रभावी हो गया है। इस समझौते पर पिछले साल 10 मार्च को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। आइसलैंड, लिख्टेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड सहित 4 विकसित यूरोपीय देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता प्रदान करता है। इससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के CEO और महासचिव रणजीत मेहता ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में निर्यातकों के लिए भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौते के लाभों को रेखांकित किया।
India's Trade and Economic Partnership Agreement
EFTA के साथ भारत का व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता कपड़ा, दवा और खाद्य उत्पादों जैसे भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार खोलता है। साथ ही आयात पर कम शुल्क सुनिश्चित करता है। EFTA की 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता के साथ यह समझौता रोजगार सृजन, विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को और मजबूत करने का काम करेगा।
एंड डीपन इंडियाज रोल इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स।
ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। फिलीपींस में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। अभी भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। प्रशासन लापता लोगों की पहचान की पुष्टि कर रहा है। कल रात आए 6.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस में भूकंप से हुई जान माल की हानि और व्यापक क्षति पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भारत फिलीपींस के साथ एकजुटता से खड़ा है। यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से 9 लोगों की जान चली गई और 5 लोगों का एक परिवार अपने घर के भूतल में फंस गया। आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि आज मूसलाधार बारिश के कारण अफरा तफरी मच गई, जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए और 32 शहरों के 42,000 लोग बिजली के बिना रह रहे हैं। बचाव दल रात भर 362 लोगों और डूबी हुई बसों से यात्रियों को बचाने और बाढ़ग्रस्त इमारतों से पानी निकालने में जुटे रहे। यूक्रेन के खार्किव में देर रात हुए रूस के हवाई हमले में 6 लोग घायल हो गए और कई स्थानों पर आग लग गई। हमले के कारण शहर का एक बाजार और कई आवासीय इमारतें आग की चपेट में आ गईं। वहीं रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले से नोवाया काखोवका में डिप्टी काउंसिल के एक प्रमुख की मौत हो गई। 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। ये हमला खेरसोन क्षेत्र की बस्तियों पर सिलसिलेवार यूक्रेनी हमलों का हिस्सा था। अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान 24 घंटे में 13 क्षेत्रों में 68 हमले किए गए। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इससे भूकंप राहत प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो रही है। दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में बचे लोग संचार, वित्तीय सेवाओं और आपातकालीन सहायता तक पहुंच न होने के कारण राहत सहायता से कटे हुए हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय समन्वयक इंद्रिका रत्वाटे ने बताया कि सभी टेलीफोन और फाइबर ऑप्टिक लाइनें बंद हैं, जिससे राहत दलों का केंद्रीय कार्यालयों से समन्वय करना बेहद मुश्किल हो गया है। स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग कार्य ठप होने से कुनार जैसे इलाकों में विस्थापित परिवारों की स्थिति और भी खराब हो गई है। बांग्लादेश में डेंगू की स्थिति गंभीर हो गई है और इस साल की शुरुआत से अब तक मरने वालों की संख्या 200 से ऊपर पहुंच गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण ढाका और अन्य प्रमुख शहरों के अस्पताल की व्यवस्था चरमराने लगी है। देश भर में डेंगू के 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मोल्दोवा की पूर्व सांसद मरीना टाउबर को प्रतिबंधित विपक्षी SOR पार्टी को कथित तौर पर वित्त पोषित करने के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में 7.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। वर्तमान में विदेश में रह रही श्रीमती टाउबर पर 20 करोड़ लेई से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है और उन्हें 5 साल के लिए सार्वजनिक या राजनीतिक भूमिकाएं निभाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार करते हुए राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं शशांक कुमार।
अभिषेक वर्मा ने ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने रैंकिंग में पहले स्थान पर रहते हुए 926 रेटिंग अंक हासिल किए, जो इससे पहले दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को नहीं मिले थे। वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती पहले स्थान पर बने हुए हैं। इस बीच भारत और श्रीलंका 11 से 23 नवम्बर तक पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे। प्रतियोगिता में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमरीका सहित 21 टीमें खेलेंगी। इधर नई दिल्ली में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप के अंतिम दिन आज मुकेश नीलावल्ली ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और साहिल चौधरी ने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में इसी स्पर्धा में तेजस्विनी सिंह ने रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा।
इधर महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मैच में आज ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रन से हरा दिया। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर और 3 गेंद में 326 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 43 ओवर और 2 गेंद में 237 रन ही बना सकी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध के बीच शटडाउन शुरू, प्रमुख सेवाएं प्रभावित, हजारों कर्मचारियों के वेतन में देरी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर बड़े स्तर पर हुए हिंसक प्रदर्शनों में 12 लोगों की मौत। इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र में निर्माणाधीन चर्च के ढहने से 25 लोगों की मौत। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या 69 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापक नुकसान पर दुख व्यक्त किया और संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट पर चिंता जताई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।